नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।